نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بہت ہی خوشی اور اللہ تعالیٰ کے آگے شکرانے کے جذبے کے ساتھ غزوہ فتح مکہ شروع کریں گے. ایسی دل عجیب سا ہو رہا ہے کہ جب یہ سیرت کی بکس شروع ہوتی ہیں تو وہ دور جب کہ مکہ کے کیا حالات تھے اور عربوں کے اسلام سے پہلے کے دور کی باتیں خاص طور پہ اس بک میں ہم نے وہی پڑھی تھی. اور اتنے مرحلوں سے گزرتے گزارتے جس میں مکہ کے 13 سال اور پھر مدینہ کے تقریباً 7.5 سال تب ہم پہنچے ہیں فتح مکہ پہ. تو پہلا عمل تو لکھیے کہ فتح ہوتی تو ہیں لیکن بیچ میں بڑے مراحل ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا فتح مکہ کا سفر کیسا تھا. طویل ٹاپک ہے اور اس میں سے ایک ایک میں سے اپنے لیے عمل کے موتی لینے کی ضرورت ہے. غزوہ فتح مکہ پیج نمبر ہے 535. امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ فتح عظیم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو، اپنے رسول کو، اپنے لشکر کو اور اپنے امانت دار گروہ کو عزت بخشی اور اپنے شہر کو اور اپنے گھر کو، جسے دنیا والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا ہے، کفار و مشرقین کے ہاتھوں سے چھٹکارا دلایا. ایک ایک لفظ کو دل پہ محسوس کریں گے نا تو آپ کو مکہ پہ بھی پیار آئے گا اور اللہ پہ بھی پیار آئے گا. اس فتح سے آسمان والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کی عزت کی تنابیں جزا کی شانوں پر تن گئیں اور اس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے اور وہ زمین کا چہرہ روشنی اور چمک دمک سے جگمگا اٹھا. یہ خوبصورت لفظ تھے واقعی فتح مکہ کے متعلق. آپ نے بھی اگر کبھی کوئی میدان جیتا ہو دین کے نام پہ، چلے اور کچھ نہیں تو آپ نے جب یہ جگہ لینے کا ارادہ کیا آج سے 2 سال پہلے تقریباً، وہ دن یاد کیجئے کیا مائل سٹون ہوتے ہیں اور پھر اللہ کی مدد سے طے ہو جاتے ہیں نا. تو وہ خوشی، وہ سرشاری اور ایسی فتوحات پھر انسان میں اعتماد بھی لاتی ہیں. تو یاد رکھیے کہ جذبے ابھرتے ہی فتوحات کے ساتھ ہیں. تو اس فتح نے واقعی بہت دیر کروائی اور بہت سارا انتظار تھا. آپ نے لیے بھی عمل کی بات اس میں لکھی کہ آپ جہاں جو بھی اللہ کے کام کر رہے ہیں اس میں کامیابیوں کی دعائیں کیا کریں. اگر آپ کوئی گروپ لیتے ہیں، اللہ ہم سے گروپ بہترین لینا. یعنی اپنے ہر چھوٹے بڑے پروجیکٹ کو فتح مکہ سے جوڑ کر دعا کیجئے. میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ ہماری چھوٹی موٹی چیزوں میں اپنی مدد ڈال دے. یا اللہ ہماری فتوحات تو یہی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہیں، تو بھی ہمیں اسلام کے نام پر کامیابیاں عطا فرما. آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ اس غزوے کا سبب کیا تھا. صلح حدیبیہ کے ذکر میں یہ بات پہلے ہو چکی کہ اس معاہدے کی ایک شق یعنی ایک پوائنٹ کیا تھا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے. اس دور میں کوئی فوج تو ہوتی نہیں تھی، نہ کوئی پولیس کا انتظام تھا، لوگ خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سیکیورٹی لے لیتے تھے. تو مراد یہ تھا کہ جو چھوٹے چھوٹے گروہ تھے وہ اگر مل کے کسی بڑے گروہ کے ساتھ جڑ جائیں تو پھر وہ ایک قسم کے انہی کا حصہ سمجھے جاتے تھے. صلح حدیبیہ میں یہ شرط ہو چکی تھی کہ جو قریش کا ساتھ دینا چاہے وہ ان کے ساتھ چلا جائے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چاہے وہ اس میں، اگر جو اپنی خوشی سے اس میں چلا گیا وہ اسی کا فریق سمجھا جائے گا. لہٰذا ایسا کوئی قبیلہ اگر کسی حملے یا زیادتی کا شکار ہوگا تو یہ خود اس فریق پر حملہ اور زیادتی تصور کی جائے گی. بہت ہی معروف ٹرم ہے جو ہم سمجھ چکے ہیں پیچھے بھی کہ کیسے لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنی افیلیشنس لیں اور پھر اس کے بعد فرض یہ بن جاتا ہے کہ اگر ان کو کوئی تنگ کرے تو پھر ان کا وہ حلیف قبیلہ ان کا ساتھ دے گا کسی بھی جنگ کی صورت میں. خیر اس جو ایک کنڈیشن تھی، دفاع کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی ٹرم تھی، وہ حدیبیہ کی صلح کے اندر لکھی ہوئی باتوں میں سے ایک بات تھی. تو اس کے تحت بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے اور بنو بکر قریش کے عہد میں داخل ہو گئے، یعنی دونوں نے اپوزٹ گروہوں کا ساتھ دیا. اسی طرح دونوں قبیلے ایک دوسرے سے مامون اور بے خطر ہو گئے کیونکہ ان کی آپس میں بہت جنگ لگتی تھی. تو ان کو لگا کہ اب کچھ ہوا تو ہمارا حلیف قبیلہ ہماری مدد کرے گا. لیکن چونکہ ان دونوں قبیلوں میں دور جاہلیہ سے عداوت اور کشاکش چلی جا رہی تھی، یعنی ان میں آپس میں ہمیشہ ہی جنگ اور لڑائی جھگڑے کی صورت رہتی تھی، اس لیے جب اسلام کی آمد ہوئی और सुलह हुदैबिया हो गई और दोनों फरीक एक दूसरे से मुतमईन हो गए, तो बनु बकर ने इस मौके को गनीमत समझकर चाहा कि बनु खुजाए से पुराना बदला चुका लें। पता क्या चला कि अभी खून में वो जो बदला लेने की और लड़ने झगड़ने की खू थी वो नहीं निकली। चुनाचे नौफल बिन मुआविया दहली ने बनु बकर की एक जमात साथ लेकर शबान 8 हिजरी में बनु खुजाया पर रात की तारीकी में हमला कर दिया। इस वक्त बनु खुजाया वतीर नामी एक चश्मे पर खैमा जन थे, यानी एक चश्मा है जहाँ इन लोगों ने पड़ाव डाला हुआ था। इनके कई लोग मारे गए, कुछ झड़प और लड़ाई भी हुई। इधर कुरैश ने इस हमले में हथियारों से बनु बकर की मदद की, बल्कि इनके कुछ आदमी भी रात की तारीकी का फायदा उठाकर लड़ाई में शरीक हुए। बहरहाल हमलावरों ने बनु खुजाया को खदीड़ कर हरम तक पहुंचा दिया, यानी हरम तक इनकी लड़ाई की बातें शुरू हो गई। हरम पहुंचकर बनु बकर ने कहा, ए नौफल, अब तुम हरम में दाखिल हो गए हैं। अगर आप नक्शा भी देखना चाहें तो आपकी बुक में बना हुआ है कि किस तरीके से इस्लामी फौज कहाँ थी और हजरत जुबैर की फौज किधर थी, और इसी तरह से वो पूरा एक नक्शा है। अगर आप बाद में इसको देखेंगे तो आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे कि उस मौके पे कौन किस रास्ते से कहाँ दाखिल हो गया। बहरहाल इस शख्स ने, जिसने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लम के साथ तो मुआहदा किया हुआ था, लेकिन ये क्या हुआ, तो हरम पहुंचकर बनु बकर ने कहा है, नौफल, अब तो हरम में हम दाखिल हो चुके हैं। यानी हरम के अंदर तो बाप के कातिल को भी पा लेते थे तो बदला नहीं लेते थे। तुम्हारा इलाह तुम्हारा इलाह, यानी ये एक बात थी बस कहने वाली, पर वो किया उनको। इसके जवाब में नौफल ने एक बड़ी बात कही, बोला, बनु बकर, आज कोई इलाह नहीं, अपना बदला चुका लो। मेरी उम्र की कसम, तुम लोग हरम में चोरी करते हो तो क्या हरम में अपना बदला नहीं ले सकते? यानी मजीद जलती पे तेल डाला। इधर बनु खुजाया ने मक्का पहुंचकर बुदैल बिन वारका खुजाई और अपने एक आज़ाद करदा गुलाम राफे के घरों में पनाह ली, और अमर बिन सालिम खुजाई ने वहां से निकलकर फौरन मदीना का रुख किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचकर सामने खड़ा हो गया। इस वक्त आप मस्जिद नबवी में सहाबे कराम के दरमियान तशरीफ फरमा थे। अमर बिन सालिम ने कुछ अशार कहे जिसका तर्जमा क्या था कि ऐ परवरदिगार, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके अहद और इनके वालिद के कदीम अहद की दोहाई दे रहा हूँ। आप लोग औलाद थे और हम जन्ने वाले, फिर हमने ताबेदारी इख्तियार की और कभी दस्तकश न हुए, यानी अपना हाथ नहीं खेंचा। अल्लाह आपको हिदायत दे, आप पुरजोर मदद कीजिए और अल्लाह के बंदों को पुकारिए, वो मदद को आएंगे, जिनमें अल्लाह के रसूल होंगे, हथियार पोश और चढ़े हुए 14वीं के चांद की तरह गोरे और खूबसूरत। अगर इन पर जुल्म और इनकी तौहीन की जाए तो चेहरा तमतमा उठता है, यानी सुर्ख हो जाता है। आप एक ऐसे लश्कर जरार, यानी बहादुर लश्कर के अंदर तशरीफ लाएंगे जो झाग भरे समंदर की तरह तलातुम खेस होगा। यकीनन कुरैश ने आपके अहद की खिलाफ वर्जी की है और आपका पुख्ता पैमान तोड़ दिया। उन्होंने मेरे लिए कदा, जगह का नाम है, कदा में घात लगाई और ये समझा कि मैं किसी को मदद के लिए ना पुकारूंगा, हालांकि वो बड़े जलील और तादाद में कलील हैं। उन्होंने वतीर पर रात में हमला किया और हमें रुकू सुजूद की हालत में कत्ल किया, यानी हम मुसलमान थे और हमें कत्ल किया गया। अब आप देखिए कि ये जो अशार नुमा बात उसने की और कितना जुबान पर इनको अबूर था। इसमें अल्लाह के नबी के वालिद के अहद का भी तذکرہ किया गया। ये वही अहद है जो बनु खुजाया और बनु हाशिम के दरमियान अब्दुल मुतलिब के ज़माने से चल रहा था। हम शुरू में इसका जिक्र सुन चुके। तो आप देखिए कि ये अरबों की खूबसूरती थी कि वो अपनी जुबान के जोर पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, यानी अपना मौकफ बहुत ही खूबसूरत बयान करते थे। हमें भी अल्लाह से यही मांगना है, रब्बि शराह ली सदरी व यस्सर ली अमरी वाहलुल उक़दता मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। ये दुआ मांगा करें। बस लोग बहुत लंबी बात करते हैं, एक ही बात को 10-10 बार घुमा के फिरा के, अंदर बात कुछ भी नहीं होती। अल्लाह ताला से कहा करें कि अल्लाह कुलु कौलन सदीदा, हमारी सीधी सी बात में असर डाल दे। तो बहरहाल अल्लाह के नबी ने जब उनकी बातें सुनी तो आपने फरमाया, अमर बिन सालिम तेरी मदद की गई। इसके बाद आसमान में बादल का एक टुकड़ा दिखाई पड़ा। आपने फरमाया, ये बादल बनु काब की मदद की बशारत से दमक रहा है। इसके बाद बुदैल बिन वरका खुजाई की सरकर्दगी में बनु खुजाया की एक जमात मदीना आई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया कि कौन से लोग मारे गए और किस तरह कुरैश ने बनु बकर की मदद की, यानी पुश्तबानी की, इमरान के पीछे से उनको हेल्प किया, सपोर्ट किया। इसके बाद ये लोग मक्का वापस चले गए। अब यहाँ से अब आप अल्लाह के नबी का एक रूप देखिएगा। हमारे कल्चर में अमूमन अल्लाह के नबी को बड़ा भोला सा, सीधा सा, मुस्कुराता, जो मर्जी कोई कह जाए होश ही नहीं, ऐसा पेश किया जाता है, जो एक लीडर के लिए खूबी की बात नहीं होती। आम लोगों के लिए जो भी हो, लेकिन अल्लाह के नबी तो रसूल भी थे, लीडर भी थे। आप अहद शिकनी को कभी बर्दाश्त नहीं करते थे, अब यहाँ से आपने बिल्कुल लीडरशिप क्वालिटीज़ को जहन में रखते हुए अल्लाह के नबी के किरदार से अपने लिए खुद अमल ढूंढने हैं, क्योंकि अब आप माशाल्लाह उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आपको इंशाल्लाह ताला अमल के नुक्ते लेने खुद भी आने चाहिए। अब इधर तो ये बात हुई, यानी अल्लाह के नबी तक बात पहुंच गई कि सुलह हुदैबिया की एक शर्त कुरैश ने तोड़ दी। जिन पे जुल्म हुआ था उन्होंने आकर खूबसूरत तरीके से अपना किस्सा भी बयान किया। खैर, अल्लाह के नबी ने उनको अपनी मदद का वादा भी दिया। अब ये बात बाहर गई तो क्या हुआ, तजदीद सुलह के लिए अबू सुफियान मदीना में आते हैं, यानी उनको पता चल गया कि हमारी गलती है और अल्लाह के नबी कभी भी अहद शिकनी, यानी जिसको आपके मिसमैनेजमेंट या रूल्स को ब्रेक करना पसंद नहीं करते थे। तो अब अबू सुफियान इस उम्मीद पर आए कि किसी भी तरह आपको मना लिया जाए, लेकिन क्या हुआ आइए देखते हैं। इसमें शुबा नहीं कि कुरैश और इनके हलीफों ने जो कुछ किया था वो खुली हुई बदहदी और सरीख पैमान शिकनी थी, जिसकी कोई वजह जवाज ना थी। इसलिए खुद कुरैश को भी अपनी बदहदी का बहुत जल्द एहसास हो गया और उन्होंने इसके अंजाम की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए एक मजलिस मुशावरत मुनक्किद की, जिसमें तय किया कि वह अपने सिपा सलार अबू सुफियान को अपना नुमाइंदा बनाकर तजदीद सुलह के लिए मदीना रवाना करें। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बताया कि कुरैश अपनी इस अहद शिकनी के बाद अब क्या करने वाले हैं। चुनाचे आपने फरमाया, गोया मैं अबू सुफियान को देख रहा हूँ कि वह अहद को फिर से पुख्ता करने और मुद्दत सुलह को बढ़ाने के लिए आ गया है। यहाँ से आप देखिए कि अल्लाह के नबी का जहीन होना और फौरन हालात को समझ जाना भी दिखता है। और अबू सुफियान अभी तक इस्लाम कबूल नहीं करते, लेकिन देखिएगा कि अब यही मौका इनके इस्लाम में आने का जरिया बनेगा। इधर अबू सुफियान तयशुदा करारदाद के मुताबिक, यानी वो चीज़ जो पहले से अपॉइंट कर ली गई थी, रवाना होकर उस्फान पहुंचे तो बुदैल बिन वरका से मुलाकात हुई। बुदैल मदीना से मक्का वापस आ रहा था। अबू सुफियान समझ गए कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से होकर आ रहा है। पूछा, बुदैल कहाँ से आ रहे हो? बुदैल ने कहा, मैं खुजाया के हमरा इस साहिल और वादी में गया हुआ था। पूछा, क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं गए थे? बुदैल ने कहा, नहीं। मगर जब बुदैल मक्का की जानिब रवाना हो गया तो अबू सुफियान ने कहा, अगर वो मदीना गया था तो वहाँ अपने ऊँट को गुठली का चारा खिलाया होगा, इसलिए अबू सुफियान उस जगह गया जहाँ बुदैल ने अपना ऊँट बिठाया था और इसकी मेंगनी लेकर तोड़ी तो इसमें खजूर की गुठली नजर आई। अबू सुफियान ने कहा, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि बुदैल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया था। यहाँ से इनकी जहानत का भी अंदाज़ा आपने किया होगा कि जानवर के चारे को ही देखकर समझ गए कि ये मदीना से आए हैं। और दूसरी बात देखिए कि इतनी जहानत के बावजूद भी अभी तक अल्लाह के नबी की सच्चाई और अल्लाह की वहदानियत नहीं समझ आई। इससे पता चलता है कि बहुत अक्लमंद लोग भी कभी कभी थोड़ा सा वक्त लेते हैं, बल्कि कुछ फिर ज़्यादा ही लेते हैं और वक्त आगे चला जाता है। बहरहाल इनको यकीन हो गया कि अल्लाह के नबी को बात पहुंच चुकी है। और इधर से ये भी पता चलता है कि जंगें और दुश्मनों के साथ मामले करने में आंखें खोल के रहना पड़ता है। बहरहाल अबू सुफियान मदीना पहुंचे और अपनी साहबजादी उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह अन्हा के घर गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बैठना चाहा तो उन्होंने बिस्तर लपेट दिया। अबू सुफियान ने कहा, बेटी, क्या तुमने इस बिस्तर को मेरे लायक नहीं समझा या मुझे इस बिस्तर के लायक नहीं समझा? उन्होंने कहा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है और आप नापाक मुशरिक आदमी हैं। अबू सुफियान कहने लगे, खुदा की कसम मेरे बाद तुम्हें शर पहुंच गया। अच्छा, मज़े की बात देखिए कि बाप कुफर पे और बेटी नबी के हरम में। आज तुम्हारे कल्चर में इसका तसव्वुर भी नहीं होता ना, लेकिन यहाँ से अल्लाह के नबी की खूबी भी देखिए कि बेटी दे दी कि ये अच्छे शख्स हैं, बाकी अपना दीन का मामला तो फिर हम निपट ही लेंगे। खैर, फिर अबू सुफियान वहां से निकलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आपसे गुफ्तगू की, आपने उन्हें कोई जवाब न दिया। इसके बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पास गए और इनसे कहा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करें। उन्होंने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इससे पता चलता है कि अबू बकर सिद्दीक को भी अपनी लिमिट्स पता थी। इसके बाद वो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के पास गए और उनसे बात की। उन्होंने कहा, भला मैं तुम लोगों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करूंगा? खुदा की कसम, अगर मुझे लकड़ी के टुकड़े के सिवा कुछ दस्तियाब ना हो तो मैं इसी के जरिए तुम लोगों से जिहाद करूंगा। आखिर ये उमर थे, उमर को तो ये बातें अच्छी लगती हैं। यानी वो नहीं दबे। इसके बाद वो हज़रत अली बिन अबी तालिब के पास पहुँचे। वहाँ हज़रत फातिमा रदिल्लाहु अन्हा भी थी और हज़रत हसन भी थे, जो भी छोटे से बच्चे थे और सामने घुटनों घुटनों चल रहे थे। अबू सुफियान ने कहा, अली रदिल्लाहु अन्हो, मेरे साथ तुम्हारा सबसे गहरा नस्बी ताल्लुक़ है। मैं एक ज़रूरत से आया हूँ, ऐसा ना हो कि जिस तरह मैं नामुराद आया इसी तरह नामुराद वापस जाऊँ। तो मेरे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश कर दो। हज़रत अली ने कहा, अबू सुफियान, तुझ पर अफसोस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात का अज़्म कर लिया है, हम इस बारे में आपसे कोई बात नहीं कर सकते। इसके बाद वो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ मुतवज्जे हुआ और बोला, क्या आप ऐसा कर सकती हैं कि अपने इस बेटे को हुक्म दें कि वो लोगों के दरमियान पनाह देने का ऐलान करके हमेशा के लिए अरब का सरदार बन जाए? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, वल्लाही मेरा ये बेटा इस दर्जे को नहीं पहुंचा कि लोगों के दरमियान पनाह देने का ऐलान कर सके और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए कोई पनाह दे भी नहीं सकता। अब मुझे बताइए कि क्या ये अबू सुफियान के साथ ज्यादती हो रही है? और अल्लाह के नबी जिस चीज़ पे नो कह दें, सहाबा में से कोई उफ नहीं कर सकता। यहाँ से ये भी देखिए, और यहाँ तीसरी चीज़ देखिए कि अबू सुफियान ने हर मुमकिन कोशिश कर ली नबी सल्लम को प्रेशराइज करने की। इवन एक बच्चे को भी सामने लाकर पेश करना चाह, लेकिन ये बात नहीं हुई। इन कोशिशों और नाकामियों के बाद अबू सुफियान की आंखों के सामने दुनिया तारीख हो गई। उन्होंने हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हो से सख्त घबराहट, कशमकश और मायूसी और नाउम्मीदी की हालत में कहा, अबुल हसन, मैं देखता हूँ कि मामला संगीन हो गए हैं, लिहाजा मुझे कोई रास्ता बताओ। हज़रत अली ने कहा, खुदा की कसम, मैं तुम्हारे लिए कोई कारामद चीज़ नहीं जानता, अलबत्ता तुम बनू कनाना के सरदार हो, लिहाजा खड़े होकर लोगों के दरमियान अमान का ऐलान कर दो। इसके बाद अपनी सरजमीन में वापस चले जाओ। अबू सुफियान ने कहा, क्या तुम्हारा ख्याल है कि ये मेरे लिए कुछ कारामत होगा, यानी इससे फ़ायदा होगा? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, मैं इसे कारामत तो नहीं समझता, यानी इट विल नॉट वर्क आउट, लेकिन इसके अलावा कोई सूरत भी समझ नहीं आती। इसके बाद अबू सुफियान ने मस्जिद में खड़े होकर ऐलान किया कि लोगों में लोगों के दरमियान अमान का ऐलान कर रहा हूँ। फिर अपने ऊँट पर सवार होकर मक्का चले गए। कुरैश के पास पहुंचे तो वो पूछने लगे, पीछे का क्या हाल है? अबू सुफियान ने कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, बात की तो वल्लाही उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। या नोट कीजिए, कभी कभी जवाब ना देना भी जवाब होता है। हम तो लंबी चौड़ी बातें करते, हाँ जी वादे तोड़े, आपको ये नहीं वो नहीं, जुमला लिखिए। अच्छे लीडर कम बोलते हैं और उनका ना बोलना भी लोगों को चुभता है। कहाँ लंबी लंबी बातें कर कर के अपनी सफाइयाँ पेश करना और अगले को और भी ज़्यादा मौका दे देना अपनी बात के करने का। फिर मैं अबू कहाफा के बेटे के पास गया, इशारा अबू बकर सिद्दीक की तरफ है, तो उनके अंदर कोई भलाई ना पाई, यानी उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। इसके बाद उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो के पास गया तो उसे सबसे कट्टर दुश्मन पाया। फिर अली के पास गया रजी अल्लाह अन्हो तो इन्हें सबसे नरम पाया। उन्होंने मुझे राय दी और मैंने इस पर अमल भी किया, लेकिन पता नहीं वो करामत है भी कि नहीं। लोगों ने पूछा, वो क्या राय थी? अबू सुफियान ने कहा, वो राय ये थी कि मैं लोगों के दरमियान अमान का ऐलान कर दूं, और मैंने ऐसा ही किया। कुरैश ने कहा, तो क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नाफिज करार दिया, यानी आपकी अमान को कबूल कर लिया? वरना तो इनको कैद कर लिया जाता, तो गोया कि इन्होंने अपने लिए अमान मांग ली। अबू सुफियान ने कहा, नहीं। लोगों ने कहा, तेरी तबाही हो, इस शख्स यानी अली ने तेरे साथ महज मजाक किया। अबू सुफियान ने कहा, अल्लाह की कसम, इसके अलावा कोई सूरत न बन सकी। यानी गोया कि अबू सुफियान बिल्कुल हैंड टू माउथ हो रहे हैं। और यहाँ से देखिए अल्लाह के नबी के नर्व्स की स्ट्रांगनेस, उनकी नर्व्स शटर नहीं हुई। ये कितनी बड़ी चीज़ है जो हम सब ने सीखनी है इंशाल्लाह, कि असाब शिकन हालात में भी कैसे खड़े रहें। बहुत बड़ा मसला होता है इंसान को अमली ज़िंदगी में चलते हुए, छोटी छोटी बात पे आप परेशान, गुस्से में आ गए, नर्व्स फूटने लगी, इसको भी छोड़ उसको भी छोड़, ये भी बोल वो भी बोल, ये अच्छी बातें नहीं होती। जो बड़े बनते हैं ना वो पहले अपने अंदर पीते हैं, पहले सब कुछ पी के फिर जितना बाहर निकालना उतना निकालते हैं। बहरहाल ये तो एक हिकमत की बात है, अल्लाह के नबी नहीं माने। यहाँ से पता चलता है कि फैज़ आज़म तवक्कल अल्लाह, जब आप किसी काम का अज़म कर लें, इरादा कर लें, तो फिर अल्लाह ताला पर तवक्कुल कीजिए। अब क्या हुआ, गजवे की तैयारी और उसको राज रखने की कोशिशें, इख्फा, एक तो कह लीजिए तजवीद का इख्फा होता है ना, और एक ये कि खुफिया से राज रखना, यानी इख्फा क्या है, खुफिया से। तबरानी की रिवायत से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद शिकनी की खबर आने से 3 रोज़ पहले ही हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को हुक्म दे दिया था कि आपका साजो सामान तैयार कर दें, लेकिन किसी को पता न चले। इसके बाद हज़रत आयशा के पास अबू बकर सिद्दीक तशरीफ़ लाए तो पूछा, बेटी ये कैसी तैयारी है? उन्होंने कहा, वल्ला ही मुझे नहीं मालूम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, यह बनू असफ़र यानी रूमियों से जंग का वक्त नहीं, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा किधर का है? हज़रत आयशा ने कहा, वल्ला ही मुझे इल्म नहीं। तीसरे रोज़ सुबह सुबह यानी अलल सुबह अमर बिन सालिम खुजाई 40 सवारों को लेकर पहुंच गया, और या रब्बी इन्नी नाशिदु मोहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अशआर कहे तो लोगों को मालूम हुआ कि कुरैश ने अहद शिकनी की है। इसके बाद बुदैल आया, फिर अबू सुफियान आए तो लोगों को हालात का ठीक ठीक इल्म हो गया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी का हुक्म देते हुए बतलाया कि मक्का चलना है, और साथ ही ये दुआ फरमाई कि अल्लाह जासूसों और ख़बरों को कुरैश तक पहुँचने से रोक और पकड़ ले, ताकि हम इनके इलाके में इनके सर पर एकदम जा पहुँचें। बड़ी बात है, देखिएगा। पहली बात एक ही इसमें अमल की ले लीजिए कि अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा को भी नहीं बताया कि किधर जाना है, तो इससे पता चलता है कि जो बात अभी जाहिर नहीं करनी तो वो घर के लोगों को भी नहीं बतानी चाहिए। हम छोटी छोटी बातें घर जाकर करते हैं बीवियाँ शोहरों से, बस जब इससे बहुत बड़े बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो इनसे हमेशा बचने की कोशिश कीजिए। तो अल्लाह के नबी की ये दुआ भी आप देखेंगे कि कैसे पूरी हुई कि किसी को खबर ना हो। फिर कमाल अख्फा यानी बहुत ज़्यादा ज़ोर था राज रखने पे। अख्फा और राजदारी की गरज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू माह रमज़ान 8 हिजरी में हज़रत अबू कतादा बिन रुबई की क़यादत में 8 आदमियों का एक सरिया बतने अदम की तरफ रवाना फरमाया। ये मुकाम ज़ी खशब और ज़िल मरवा के दरमियान मदीना से तकरीबन 36 यानी 36 मील के फासले पर वाक़ है। मकसद ये था कि समझने वाला समझे कि आप इसी इलाके का रुख करेंगे, और यही खबरें इधर उधर फैली। लेकिन ये सरिया जब अपने मुकर्रर मुकाम पर पहुंच गया तो इसे खबर मिली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लिए रवाना हो चुके हैं, चुनाचे ये भी आपसे जा मिला। ये भी जंगी टैक्टिस है। देखिए, ये भी लीडरशिप क्वालिटीज़ में नोट कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जहन में दूरस्थ बात रखते थे और स्टेप्स क्लोजली रखते थे, यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते थे और शॉर्ट टर्म स्टेप्स लेते थे। यही कामयाबी की एक बहुत खूबसूरत दलील है। इधर अब हातिम बिन अबी बलता ने कुरैश को एक रुक्का लिखकर ये इत्तला दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला करने वाले हैं। उन्होंने ये रुक्का एक औरत को दिया था और इसे कुरैश तक पहुँचाने पर मुआवजा रखा था। औरत सर की चोटी में रुक्का छुपा कर रवाना हुई, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं से खातिब की इस हरकत की खबर दे दी गई। चुनाचे आपने हज़रत अली, मिक़दाद, ज़ुबैर और अबू मरसद गनवी रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन को ये कहकर भेजा कि जाओ रोज़े खाख, जगह का नाम है, इधर पहुँचो। वहाँ एक खौदच नशीन यानी ऊँटनी के ऊपर एक वो जो डोली सी बनी होती है उसमें बैठी हुई एक औरत मिलेगी, जिसके पास कुरैश के नाम एक रुक्का होगा। ये हजरत घोड़ों पर सवार तेज़ी से रवाना हुए। वहाँ पहुँचे तो औरत मौजूद थी। इसे कहा कि वह नीचे उतरे और पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई खत है? उसने कहा, मेरे पास कोई खत नहीं। उन्होंने इसके कजावे की तलाशी ली लेकिन कुछ न मिला। इस पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इससे कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ कहा, ना हम झूठ कह रहे हैं। तुम या तो खत निकाल दो या फिर हम तुम्हें बेलिबास कर देंगे। जब इसने ये पुख्तगी देखी तो बोली, अच्छा मुंह फेरो। उन्होंने मुंह फेरा तो इसने चोटी खोलकर खत निकाला और इनके हवाले कर दिया। ये लोग खत लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। देखा तो इसमें तहरीर था हातिब बिन अबी वलता की तरफ से कुरैश की जानिब। फिर कुरैश को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी की खबर दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिब को बुलाकर पूछा कि हातिब, ये क्या है? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल मेरे खिलाफ जल्दी न फरमाएं। अल्लाह की कसम, अल्लाह और इसके रसूल पर मेरा ईमान है, ना तो मैं मुर्तद हुआ हूँ ना मुझ में तब्दीली आई है। बात सिर्फ इतनी है कि मैं खुद कुरैश का आदमी नहीं, अलबत्त इनमें छिपका हुआ था और मेरे अहलो याल और बाल बच्चे वहीं हैं, लेकिन कुरैश से मेरी कोई कराबत नहीं कि वो मेरे बाल बच्चों की हिफाजत करें। इसके बरखिलाफ़ दूसरे लोग जो आपके साथ हैं, वहाँ इनके कराबतदार हैं जो इनकी हिफाजत करेंगे। इसलिए जब मुझे ये चीज़ हासिल ना थी तो मैंने चाहा कि इन पर एक एहसान कर दूँ जिसके इवज़ वो मेरे कराबतदारों की हिफाजत करें। इस पर हज़रत उमर फारूक रज़ील्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल मुझे छोड़िए, मैं इनकी गर्दन मार दूँ, क्योंकि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की खयानत की है और ये मुनाफिक हो गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो ये जंगे बदर में हाजिर हो चुके हैं, और उमर तुम्हें क्या पता, हो सकता है कि अल्लाह ने अहले बदर को देखकर कहा हो कि तुम लोग जो चाहो करो, मैंने तुम्हें बख्श दिया। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की आंखें अश्कबार हो गईं और उन्होंने कहा कि अल्लाह और इसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। बहुत सी सीखने की बातें हैं इसमें, बहुत सारी तो आप खुद भी सीखेंगे, लेकिन एक चीज़ तो देखिए कि इन्ना मामवालुकुम औलादुकुम फितना। और यह पूरा वाक़या सूरत तगाबुन में पढ़ते हैं। जब आखिरी 28वें पारे में जाएंगे तो वहाँ इसका पूरा किस्सा है कि कैसे बीवी बच्चों की मोहब्बत में, हालांकि दिल में इखलास है, ईमान है, लेकिन ज़ाहर तो अब देखिए तो एक किस्म की गद्दारी की कैफियत है। जंगी राज दे देना बहुत बड़ी बात है, लेकिन देखिए अल्लाह के नबी ने कितने पुरसकून तरीके से उनसे बात की, सुनी। और ऐसी नीस अमल की बात है कि अगर आपको ये भी पता चले ना, फलां छोड़ के चला गया, फलां को पता नहीं क्या हो गया, फिर भी ना माने, सुकून से बात करें। ये जो हर वक्त की हैंकी पैंकी और अफवाह साजी और इधर की उधर, ये हो गया वो हो गया, नहीं अब ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। दूसरी बात देखिए कि ये जो औरत थी, ये गज़वे बदर के बाद मक्का से मदीना आके यहाँ रहने लग गई थी। असल में ये तवायफ थी। कहने लगी, सारे बड़े लीडर तो आपने मरवा ही दिए, अब तो हमारा कोई काम ही नहीं रहा मक्का में, तो मुझे मदीना में रख दें। तो अल्लाह के नबी ने अपनी नरम तबीयत की वजह से इसकी दरख्वास्त कबूल की, लेकिन असल में ये जासूस थी, इधर की बातें उधर लेकर आती थी, और इसका नाम सारा था। तो ये सारी चीज़ें हमें इधर से बताती हैं कि इंसान को हमेशा आंखें खोल कर के ये सारी चीज़ों को लेना चाहिए, और इसी तरह से ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। और फिर हजरत अली का यकीन देखिए, रुके ही नहीं बीच में, कहा अगर अल्लाह के नबी ने रोज़े खाख का है तो वो औरत वहीं मिलेगी। यहाँ से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी नबी सल्लम की बातों पर इतना ही यकीन दिला दे जितना कि हजरत अली और उनके साथियों को था। खैर, अल्लाह ताला ने जासूसों को पकड़ लिया और मुसलमानों की जंगी तैयारियों की कोई खबर कुरैश तक नहीं पहुंच सकी। तो क्या पता चला इतनी बात से, अपने लिए लीजिएगा कि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। और यहाँ तक हमने गज़वे फतेह मक्का से पहले के हालात पढ़ लिए, जिसमें सबब भी पता चल गया और बाकी चीज़ें भी देख ली कि अल्लाह के नबी वादा शिकनी पसंद नहीं करते थे, अहद तोड़ना पसंद नहीं करते थे। आप जब किसी चीज़ का इरादा कर लेते थे तो उसके पीछे नहीं होते थे। ये स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं। अल्लाह ताला में अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे इस्लामी लश्कर मक्का की राह में।